प्रातः क्लास चल रहा था, पच्चीस चार 1966 सोमवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी तुम आत्मा हो और देह का सभी बांध छोड़ दो। बात कहते हैं मुझे याद करो तो तुम फिर सतोप्रधान हो जाएंगी और ये बात सीढ़ी पर बहुत समझाना है। दिखलाना है कि कैसे आत्माभिमानी कलयुग के अंत में देहभानी बनते हैं और फिर वही देह अभिमान वाले सतयुग के आदि में भी सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी ये सीढ़ी छोटी है, फिर पीछे ये बनती है। और दिन प्रतिदिन सुधरती जाती है। सीढ़ी का चित्र पीछे क्यों बनता है? और चित्र पहले तैयार हो गए, क्योंकि ये सीढ़ी खास करके भारतवासियों के लिए बनाई गई है। भारत और भारतवासियों के उत्थान और पतन की कहानी, सीढ़ी भी सुधरती जाती है। ऐसी तो हर एक चीज सुधरती जाती है। उनमें अभी कुछ सुधारने की बात नहीं रही है, वो सिर्फ उसमें क्लियर लिखना है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना आदि सनातन देवी देवता धर्म की, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना फिर कैसे? बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, पुरुषतन छोड़ दिया, ब्रह्मा के जिस पुरुषतन की पूजा नहीं होती है वो ही ब्रह्मा की आत्मा कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाती है। जिसके लिए बोला है ये बाबा भल चला जावे परंतु मम्मा अंत तक पाठ बजाती रहेगी। स्त्री चोले ब्रह्मा की पूजा की जाती है देवी के रूप में, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना आदि सनातन देवी देवता धर्म की, फिर उनमें कहा जाता है शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश। क्योंकि सतयुग में जब आदि सनातन धर्म था तो दूसरे कोई धर्म दुनिया में थे ही नहीं। तो वो सभी धर्म खत्म हो जाते हैं, इसे जो पवित्र बनते हैं वो आते हैं, और पवित्र बनना तो बहुतों को है ना। सभी इकट्ठे तो नहीं आवेंगे ना। सभी मने कौन? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे कोई पहले कन्वर्ट हुए थे, कोई बाद में कन्वर्ट हुए हैं। तो जो पहले कन्वर्ट होते हैं वो पहले ज्ञान में आते हैं, पहले ज्ञान में आते हैं और पहले पहले पुरुषार्थ करते हैं आत्मिक स्थिति का। पवित्र बनते हैं तो नंबर बार ही आएंगे नई दुनिया में, और यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार ही आएंगे। क्योंकि जितनी जितनी ताकत तुम्हारे में बढ़ती जाएगी, जितना जितना ज्ञान में तुम तीखे होते जाएंगे, उतना उतना पहले आएंगे। मना जो ज्ञान में डल होंगे वो बाद में आएंगे, ज्ञान में तीखे होने वाले पहले आएंगे। बोला दूसरा, जो कम पढ़ते हैं कम जानते हैं वो फिर थोड़ा पीछे आ गए। सब इकट्ठे तो नहीं आवेंगे ना। सब ब्राह्मण तो आकर के सूर्यवंशी घराने में नहीं बैठेंगे ना। सब क्यों नहीं? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की कुरियां होती हैं। कोई ऊंची कुरी के ब्राह्मण है, कोई नीचे कुरी के ब्राह्मण है। तो जो अब्बल नंबर के ज्ञान सूर्य से झुके हुए सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, वो पहले पहले सतयुग में आते हैं। बाकी और कुरियों वाले ब्राह्मण जैसे और धर्म है तो ब्राह्मणों की और कुरियां भी हैं। नंबर बार धर्म में आती हैं आत्में तो नंबर बार कुरियां हैं। ये ब्राह्मणों की कुरियाँ अभी तैयार हो रही हैं ज्ञान के आधार पर। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर इस्लामी बौद्धिक सेनादि। उन धर्मों में भी कन्वर्ट होने वाले नंबर पर आएंगे। सब एक साथ नहीं आएंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आते जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में बाबा ने रात भी समझाया था, ये जानते हो कि हमारा देवी देवता धर्म वहाँ सतयुग में थोड़ा होता है, इतना होता है, है? सतयुग के पहले जन्म में 9 लाख, आज तो दुनिया की आबादी 500-700 करोड़ है। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है, तो ब्राह्मण भी बहुत हो जाएंगे। बाकी सतयुग में देवी देवता धर्म वाले छोड़े, क्योंकि पीछे वो वृद्धि को पाते रहते हैं। तो जो वृद्धि पाने वाले हैं वो भी यहाँ जरूर ज्ञान लेंगे। यहाँ माने कहाँ, संगम में ही ज्ञान लेंगे, तो बहुत बहुत प्रजा बनेगी और ढेर के ढेर बनेंगे। बाबा ने समझाया ना, जो चित्र है इनको बनाने में तो कम से कम 10/4 कारीगर होने चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी ये चित्र बनाते जा रहे, सिर्फ जरा चित्रों की प्रदर्शन करने के लिए कारीगर चाहिए या चैतन्य चित्रों की भी प्रदर्शनी होनी है? तो 10 कारीगर वो कौन कौन होंगे? दस धर्म है, सूर्यवंश है इस्लामी बौद्ध, सूर्यवंश है चंद्रवंश इस्लामी बौद्ध, क्रिश्चियन सन्यासी मुस्लिम, सिख अर्धनास्तिक आर्य समाज और लास्ट में नास्तिक वर्ग, जिन्हें शास्त्र में 4 बात कहा गया है। उनको तैयार करने वाले कारीगर भी चाहिए। तो जल्दी जल्दी ये चित्र बनाते जावे, ये प्रदर्शनी भेजते जावे एकदम ब्लैक, वो आप ही अपनी भाषा में लिखेंगी। अपनी अपनी भाषा में लिखने में उनको क्या लगेगा, लिखने वाले लगाएं तो दो रोज में तीन रोज में सबके ऊपर लिखत लिख देंगे, इनकी इनकी ये क्वालिटी। किस्म किस्म की भाषा वाले होते हैं। उर्दू चाहता है तो उर्दू लो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। उसमें भी मुख्य चित्र होने चाहिए, जो भी मुख्य चित्र हो, ये भी कोई बहुत चित्र नहीं है। अच्छा, कोई को 18 दो, कोई को 16 दो, 15 दो, काम तो चलाते रहे ना। उनमें जो मुख्य चित्र हो उसके पास जगह थोड़ी कम है तो वो थोड़े उसमें फिर मुख्य चित्र डालो। मुख्य चित्र में से भी तो आई गई, फिर और भी बहुत चित्र आ गए। ये सीढ़ी समझाने में बहुत सहज है और समझाने वाली भी तो कुछ कुछ चाहिए। देखते हैं कोई इतना समझाती है, इतना 3-4 वर्ष होते हैं तो वृद्धि में ऐसों की बुद्धि में बहुत आता है, फिर कोई कोई के बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे। कहेंगे तकदीर, पच्चीस साक्षात चट्टी वाणी का 5वां पेज मिले। बाबा तो कितना सहज बैठ करके समझाते हैं, तो बच्चों को ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? है इतना सहज समझाते हैं तो बच्चों को बुद्धि में न बैठने का कारण क्या है? हर एक आत्मा कम और ज्यादा जन्म लेने वाली है, सभी कोई पूरा 84 का चक्कर नहीं लगाते। जो सतयुग के पहले जन्म में आवेंगे भले 84 जन्म लेंगे, परंतु कुछ न कुछ वर्ष तो उनके कम हो जाएंगे। नंबर वार तो आत्मा में पूरा राउंड पार्ट नहीं भरा हुआ है, तो जल्दी नहीं समझेंगे। जिनकी आत्मा में पूरा ऑलराउंड पार्ट भरा हुआ होगा उसकी आत्मा जल्दी समझेगी। जैसे शास्त्रों में एक पार्टधारी को अजन्मा बताई दिया, अनादि है। कौन है वो पाठधारी है? जो पाठधारी तो है, 84 के चक्र में आने वाला तो है, परंतु उसके माँ बाप का नाम कोई नहीं जानता है। शंकर के लिए कहते हैं, तुमाद देव है, पुरुष है, पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो ऑलराउंड पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, इसलिए उनको तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तीसरे नेत्र का नाम भी शिव नेत्र देते हैं। शंकर नेत्र नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि शिव ही प्रवेश करके वो नाम देते हैं। शिव तो अजन्मय है, उनको अपना शरीर नहीं है। शंकर को तो अपना शरीर है, तो तीसरा नेत्र जो यादगार दिखाते हैं, उसके लिए मुरली में बोला है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो बताया कि कोई की बुद्धि में ये ज्ञान बहुत जल्दी बैठता है और कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं, तो क्या कहेंगे? उनकी तकदीर। तो ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? क्योंकि देह अभिमान बहुत है एकदम, अनेक जन्मों का देह अभिमान भरा होगा, अनेक धर्म वालों का संग का रंग लिया होगा, देह अहंकार के कारण उनमें ये बातें जल्दी बुद्धि में नहीं बैठी। इसलिए उस ज्ञान की धारणा ही नहीं होती है। नहीं तो धारणा दिन प्रतिदिन बहुत जास्ती होनी चाहिए। बच्चे जानते हैं, बड़ी अच्छी युक्ति बाबा बताते रहते हैं, कोई को समझाने की। उसमें भी दो बाप की बात तो बहुत सहज है, बिल्कुल सहज। क्या कौन कौन से दो बाप है? शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना एक होता है। आत्माओं का बाप, सभी आत्माओं का एक ही बाप है, परंतु क्या जो शरीरधारी हैं उन सब 500-700 साड़ी धारियों का भी कोई एक बाप होता है। जैसे आत्माओं का बाप पारलौकिक बाप है, इस लोक का रहने वाला नहीं है, परंतु जो देहधारी मनुष्य है तो वो तो इस लोक के रहने वाले हैं। देह इसी दुनिया में होती है, पारलोक में नहीं होती है, वो तो आत्माओं का देश है, सोल वर्ल्ड कहते हैं। तो देहधारी मनुष्यों का भी एक बाप है बेहद में, जिसे अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में उसे आदिदेव कहते हैं। तो दो बेहद के बाप हैं, जिनकी समझानी बहुत सहज है। वो वर्षे की आमदनी की बात है, कि हद का बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जिस बेहद के बाप को सब याद करते हैं, हे परमपिता, ओ गॉड, या अल्लाह, तो बरोबर वो परमपिता आया हुआ है भारत में। क्यों? जो सबका पिता है, हर धर्म वाले का पिता है, हर देश वाले का पिता है, तो सिर्फ भारत में ही क्यों आया हुआ है? हैं? उसको मानते भारत में ही पवित्रता क्यों आती है? ये गीता में बोला है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। नाम ये भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, तो भारत में ही आते हैं। पर रूप से बाप उस रथ में ही प्रवेश करते हैं, जिसका धंधा ही है ज्ञान की रोशनी में रहना। पुरुषार्थ करने के बाद जो संपन्न स्टेज बनती है, उस संपन्न स्टेज का नाम ही है नारायण। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण, नार माने जल, आयन माने घर, ज्ञान जल में ही उसका घर है। माना जो आत्माएं ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती हैं, उनमें ज्ञान भी कम होता है और ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो अव्वल नंबर है उसका नाम मुसलमानों ने दिया है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह हमारे निराकार ऊंचे से ऊंचे रहने वाला, वो आकर के अव्वल दीन माने अव्वल धर्म की स्थापना करते हैं। कौन सा है अव्वल धर्म? क्राइस्ट से पहले तो बुद्ध हुए, बुद्ध से भी पहले इब्राहिम हुआ, उनसे भी पहले देवी देवताएं थे, तो देवी देवता धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन माने प्राचीन, आदि का धर्म। वो अव्वल नंबर पार्टधारी के द्वारा स्थापन होता है। स्थापन करने वाला तो परमपिता परमात्मा ही है। क्योंकि और सब धर्म पिताएं, जो भी देहधारी धर्म पिताएं हैं, वो स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकते। क्योंकि सदैव स्वयं स्थिति में स्थित नहीं रहते। एक शिव ही है जो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहता है, वो ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भी सदैव स्वयं स्थिति में नहीं रहता। अगर रहने वाला होता तो उसको याद में बैठा हुआ क्यों दिखाया गया? याद में बैठा है इसका मतलब है पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। तो परमपिता भारत में आया है, इसकी यादगार शिव जयंती गाई जाती है। जयंती माने जय जयकार। भक्ति मार्ग में तो मनाते रहते हैं शिव जयंती, जानते नहीं है कि कब आता है, है? कौन से महीने में मनाते हैं? माघ मास। पहले महीने का नाम क्या है? चैत वैसाख जेठ आषाढ़, हिंदी में कहते हैं। आखिरी महीने का नाम क्या है? माह के बाद फागुन। तो एकदम लास्ट महीने में नहीं आता है। षष्ठी का बिल्कुल अंत हो जाए तब नहीं आता है, कुछ पहले आता है। तो माघ मास दिखाते हैं, उसमें भी अंतर है। दक्षिण भारत में अंतर पड़ता है और उत्तर भारत में माघ मास में मनाते हैं। क्यों?
तो प्रभाव समझाना होता था भाई।
नहीं, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, आजकल के हिसाब से जाति बुद्धि विदेशियों में है या भारतवासियों में है? तो जो बुद्धिमान होगा वो भगवान को पहचानेगा या बुद्धू पहचानेंगे? तो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। पहचान में आगे जाते हैं। परंतु उस बाप ने आकर के क्या किया ये नहीं जानते। अगर ये जानते होते विदेशी लोग कि बाप ने आकर के क्या किया, तो अपने अपने धर्म पिताओं के पीछे लगते क्या? धर्म पिताओं ने इस दुनिया को तो और ही नीचे गिरा दिया। उन धर्म पिताओं के आने के बाद दुनिया और ही नरक बनती गई बजाय स्वर्ग बनने के। तो पहचानते तो हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बाप ने आकर क्या किया। क्या किया? जो कोई भी मनुष्य गुरु ने नहीं किया, कोई भी धर्म पिता ने नहीं किया, वो बाप ने आके किया। क्या किया? नरक को स्वर्ग बनाने का काम ये बाप ही का काम है। ये बात कोई मनुष्य नहीं जानते। कि किसने आकर के भारत को स्वर्ग बनाया? तो बाबा क्या करेगा? तो आकर कहना होता है भाई हद का वर्षा तो लेते आए हो। क्या कहा? हद का वर्षा तो लेते आए हो, अभी बेहद का वर्षा ले लो। इसी जन्म के लिए 100% सुख शांति का वर्षा ले लो। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा तुमको देगा। हद का वर्षा तुम्हारे लौकिक बाप देते हैं। और लौकिक बापों का भी बाप कौन है? जो जो लौकिक बाप हैं, पांच सौ करोड़ लौकिक बाप बनते हैं ना, तो उनका भी कोई बेहद का बाप होगा। कौन? प्रजापिता, जो प्रजापिता है वो बेहद का लौकिक बाप है, पारलौकिक बाप नहीं कहेंगे। उससे भी वेद का पारलौकिक वर्षा नहीं मिल सकता, क्योंकि नरक के पार है स्वर्ग। वेद का बाप आत्माओं का बाप ही देता है, बाकी स्वर्ग के बाद फिर क्या आता है? नरक आता है। नरक में भी बड़ी बड़ी राजाइयां हुई हैं या नहीं हुई है? है? वो धर्म पिताएं तो आते हैं, सिर्फ आकर के अपना धर्म स्थापन करके चले जाते, दूसरा जन्म लेते, राजी तो स्थापन नहीं करते। जो बेहद का बाप, चाहे वो आत्माओं का बाप हो और चाहे वो मनुष्य शक्ति का बाप हो, उनका क्या धंधा है बेहद के बापों का? है अरे पिता क्या देता है, पिता की बात है। पिता वर्षा देता है, आत्माओं का बाप तो बेहद का वर्षा देता है स्वर्ग का। तो जो मनुष्यों का बाप है, देह अभिमानी मनुष्यों का बाप, वो भी बेहद का बाप तो है ना, वो क्या देता है? वो भी राजा ही देता है, राजा ही का ही वर्षा देता है। लेकिन स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकता, जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म की स्थापना तो करते हैं, राजा की तो स्थापना ही नहीं करते। राजा ही की स्थापना तो तब हो जब उनकी जनरेशन बढ़ करके लाखों की तादाद में हो जाए। वो राजा ही का वर्षा हर धर्म वालों को देने वाला, वो बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप है। ये बात दुनिया में कोई नहीं जानता, वेद का वर्षा देता है। परमपिता परमात्मा शिव और वेद का सुख का वर्षा। देखो इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा था, ये देवताएं हैं, सतयुग और त्रेता में यही तो राज्य करते थे ना। कौन है, किसकी तरफ इशारा किया है? जब बाबा बोलते थे देखो इनको था ये वर्षा, किस तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण की तरफ। क्या वर्षा था? सतयुग त्रेता में यही राज्य करते थे, मना जिस नंबर की गद्दी में सचिव में बैठते थे उसी नंबर की गद्दी में त्रेता में भी ये बैठते थे। क्या मतलब? सचिव में कितनी पीढ़ियों में राजाइयां होती हैं?
आठ में।
संगम युग भूल गए? राधा कृष्ण को राज्य किससे मिलेगा? अपने माँ बाप से ही मिलेगा ना, तो वो भी तो एक पीढ़ी हो गई। तो नौ पीढ़ियों में जो अब्बल नंबर है वो नरसे नारायण बनने वाली आत्मा सतयुग का पहला राजा महाराजा, और वो ही जाकर के त्रेता में पहला राम राजा बनता है। मुरली में ये बात क्लियर करके कभी नहीं बोली गई, बोली है? इस महावाक्य से क्लियर हो जाता है। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, देखो इनको था ये देवताएं सतयुग और त्रेता में यही तो राज्य करते थे ना, यही माने कौन? त्रेता में कहां राज्य करते थे, मैंने उनकी आत्माओं की तरफ इशारा किया। बाप क्या देखते हैं, देह को देखते हैं या आत्मा को देखते हैं? यही तो राज्य करते थे ना, इनको ये वर्षा कहाँ से मिला?
संगम पर बात देखा है,
संगम युग में मिला। किसने दिया? बेद के बाप ने दिया, तो बाप से इनको वर्षा मिलता। 21 पीढ़ी पूरी होती है, तो यही समझा देना चाहिए कि इनमें जब ऊपर लिखते हो सूर्यवंशी, फिर नीचे में लिखते हो सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी। ये सो अक्षर जरूर डाल दो। त्रेता में क्या? चंद्रवंशी। द्वापर के आज में कौन वंशी?
वैश्यवंशी।
समझा? तो मालूम पड़े कि वो ही आत्माएं फिर पुनर्जन्म लेती हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनते हैं। तो 84 जन्म तो लेते हैं ना, तो फिर फलाने फलाने वर्णों में भी आते हैं। फलाने फलाने तो कौन कौन से वर्णों में है? अरे
ब्राह्मण वर्ण,
वैश्य वर्ण, ब्राह्मण के बाद देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये वर्ण कहाँ तैयार होते हैं? संगम पर। ये गीता में लिखा है चातुर्वर्णमयाम गुण कर्म विभाग से। क्या अभी हर ब्राह्मण जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो अपने अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, अपनी बात से, अपने व्यवहार से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने कर्मेंद्रियों के कर्मों से, अपने अपने वर्णों को फिक्स कर रहा है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये वर्ण व्यवस्था अभी तैयार हो रही है संगम में। भगवान ने आकर के ये वर्ण तैयार किए, ऐसे नहीं। कि भगवान ने कोई ब्राह्मण बना दिया या किसी को शूद्र बना दिया, जिसने जैसा पार्ट बजाया उसका जन्म जन्मांतर के लिए वैसा वर्ण तैयार हो जाता है। तो देखो 84 जन्मों में तो आते हैं, तो फलाने फलाने वर्णों में भी आते हैं। तो लक्ष्मी नारायण चारों ही वर्णों में आएंगे या सिर्फ एक ही वर्ण में आएंगे? चारों वर्णों में आएंगे। फिर कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जो चारों वर्णों में नहीं आती है? कोई से शूद्र ही बनते हैं, कोई वैश्य और शूद्र दोनों बनते हैं, कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं, ऐसे भी होते हैं या नहीं होते हैं? ऐसे भी होते हैं। ये चंद्रवंशी भी वर्ण है ना, कुल है। ये नोट कर दो, सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल, और बताता तो सबको है। भाई तो ये कुल भी है और वर्ण भी है। ये वर्ण की बात सबको बताता है। क्या मुख से बताता है तुम इस वर्ण के हो? है इसमें बताता हूँ, और जो बताता हूँ वो तुमको अच्छी तरह से समझ में आता है, औरों को उतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। अभी सन्मुख बैठे हैं तो खुशी होती है, धारणा भी होनी चाहिए। अरे ये भूल जाती है, देखो ये कितने वर्ष की है, कोई की तरफ इशारा किया, 25 वर्ष की है या 30 वर्ष की है, तो ये सर्विस कर सकती है ना, परंतु क्यों नहीं करती है? क्षमता ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं है। इशारे में बता दिया, क्या बता दिया? ब्राह्मणों का ध्यान किस तरफ होता है? है? ब्राह्मणों का तो धंधा ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अगर कोई का ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं जाता है, बाहर की दुनिया की तरफ धंधे धोरी में ही ध्यान जाता है, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है नहीं? ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं है
तो
अरे तो फिर कहते हैं कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। नहीं तो उनको इशारा करता हूँ, जाओ बच्ची, जा करके ये अच्छी अच्छी बातें सुनाओ कि भगवान आकर के अभी चार वर्णों की स्थापना कर रहे हैं। तुम एक सेंटर की बन सकती हो। बात पुरानी है एकदम, तुम एक सेंटर की मुखिया बन जाएंगी तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। बोलेंगे बाबा की बच्चियां देखो कितनी होशियार है, ये सब काम कर सकती है, गाड़ी भी खरीद करती है तो सामान भी खरीद करती है। देखो इतना वखर देती है, व्यवहार करती है, तो हमको स्वर की बादशाही का भी वर्षा देती है, ये भी वखर देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का ध्यान करते हैं। अभी और है क्या? ये बिल्कुल समझाने का सहज है। अंधों के आगे चित्र रखा हुआ है क्योंकि बच्चों को पहले चित्र पर समझाया जाता है, तो ये एक को समझाएंगे दूसरा सबको ले आएगा। बोलेंगे इसमें जादू की कोई बात नहीं, ये सारा पवित्रता के ऊपर झगड़ा है। हम कहते हैं काम महाशत्रु है, ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो फिर जरूर पवित्र तो बनेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में कैसे आवेंगे? और ये अंतिम जन्म है, विनाश तो सामने खड़ा है, तो जरूर पति दुनिया का विनाश होकर के पावन दुनिया बनेगी, तो पावन दुनिया में जाने के लिए पावन तो बनना पड़े ना। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं जीत पहनो? जीत और हार कब होती है? है? जब लड़ाई हो तो कैसे लड़ाई लड़े? तीतरबाल की लड़ाई है क्या? है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध सामने खड़ा है, महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। माना पांच विकारों की लड़ाई, पांच विकार हमारे दुश्मन है। उनका मुख्य डकैत है काम, वो सामने तो आता नहीं, लड़ाई किससे आता है कि नहीं आता है, है? कोई कहता नहीं आता है, है? सामने आता है कि नहीं आता है? अरे माता है तो बिल्कुल चुप। अरे वो दुश्मन सामने आता है तब तो लड़ाई लड़े, क्या ऐसे ही तलवार घुमाने लगे अंधेरे में, है? तो कोई न कोई रूप धारण करके सामने आता जरूर है। तो जब सामने आता है युद्ध करने वाला, तो शास्त्रों में लिखा है कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो युद्ध करना चाहिए या भाग जाना चाहिए? खास काम विकार के बारे में। लेकिन ये भी बता दिया मुरली ने, पतित बनना है वो तो कायदा है इस कलयुग की दुनिया का, ऐसा मनुष्य तो कोई है ही नहीं जो पतित न बनता हो, परंतु एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे। नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो बेकायदे काम करने लग पड़ते हैं, चोरी करते हैं तो बेकायदे काम है ना, डकैती डालते हैं तो बेकायदे काम हुआ ना, तो बोला ये काम महाशत्रु है इसको जीतो, शब्द ही ऐसे बोलते हैं जीतो हारो नहीं, हारना किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं, साइकिल पर चढ़ने वाला साइकिल पर चढ़ता है बार बार गिर जाता है, बार बार चढ़ता है बार बार गिर जाता है बार बार चढ़ता है, फिर आखिरी छोड़ दे तो क्या कहेंगे, हार गए। और छोड़ता नहीं है,
बैठ के दौड़ने लगे तो जीत गया, बैठ के दौड़ने लगा चढ़ के तब जीत गया,
बुढ़िया अच्छी तरह से जानती है। ओम शांति।